नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रगति से पिछले 10 वर्षों में 85 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को रफ्तार देने में मदद मिली। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में चुनाव अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज पुलिस शिकायत में लगाए गए सभी आरोपों को खारिज किया। सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर 1 फरवरी से अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाए जाने की तिथि अधिसूचित की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की दूरदर्शिता भारत और बांग्लादेश के बीच साझेदारी के विकास का मार्गदर्शन करेगी। दुनिया भर में लोगों ने आतिशबाजी और जश्न के साथ नए साल का स्वागत किया और बेंगलुरु के गुंजूर में राष्ट्रीय जूनियर खो खो प्रतियोगिता शुरू। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित बहुआयामी मंच प्रगति की 50वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान श्री मोदी ने सड़क, रेलवे, बिजली, जल संसाधन और कोयला सहित विभिन्न क्षेत्रों की 5 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। ये परियोजनाएं 5 राज्यों से जुड़ी हैं और इनकी कुल लागत 40,000 करोड़ रूपये से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में प्रगति के नेतृत्व वाले पारिस्थितिकी तंत्र ने 85 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को गति देने में मदद की है। एक रिपोर्ट।
2014 से अब तक प्रगति के तहत 377 परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। इन परियोजनाओं से जुड़े 3,162 मुद्दों में से 2,958 मुद्दों का समाधान किया जा चुका है, जो लगभग 94% है। इस पहल से परियोजनाओं में होने वाली देरी, लागत बढ़ने और आपसी समन्वय की समस्याओं में काफी कमी आई है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे जैसे भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, प्रगति की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 एक राष्ट्रीय संकल्प होने के साथ साथ समयबद्ध लक्ष्य भी है और इसे हासिल करने में प्रगति एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आने वाले वर्षों में प्रगति को और मजबूत किया जाना चाहिए ताकि कार्य तेजी से हों, गुणवत्ता बेहतर हो और नागरिकों के लिए ठोस व मापने योग्य परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें। आनंद कुमार और सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव आयुक्त और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के विरुद्ध SIR प्रक्रिया के संबंध में दर्ज की गई 2 पुलिस शिकायतों पर चुनाव आयोग ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्यालय ने एक बयान में आरोपों को पूर्व नियोजित और निराधार बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि ये शिकायतें SIR 2026 के लिए कानूनी कर्तव्यों का पालन कर रहे अधिकारियों को डराने धमकाने का जानबूझकर किया गया प्रयास है। आयोग ने कहा कि डराने धमकाने की रणनीति बाहरी दबाव के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए बनाई गई है। चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसे प्रयास सफल नहीं होंगे। बयान में कहा गया है कि इन संगठित और सुनियोजित शिकायतों के पीछे की साजिश का पर्दाफाश करने के लिए हर संभव उपाय किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 लेन वाले नाशिक सोलापुर गलियारे को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये गलियारे कई महत्वपूर्ण शहरों को कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि ये परियोजना लगभग 251 लाख प्रत्यक्ष और लगभग 314 लाख अप्रत्यक्ष मानव कार्य दिवस रोजगार सृजित करेगी। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने ओडिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग 326 को चौड़ा करने संबंधी परियोजनाओं को भी अपनी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सरकार ने इस वर्ष 1 फरवरी से तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और पान मसालों पर नया उपकर लगाने की अधिसूचना जारी कर दी है। तंबाकू और पान मसालों पर ये नए शुल्क वस्तु और सेवा कर GST दर के अतिरिक्त होंगे और वर्तमान में इन पर लगने वाले क्षतिपूर्ति उपकर का स्थान लेंगे। 1 फरवरी से पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू और ऐसे उत्पादों पर 40% और बीड़ी पर 18% GST लगेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित जल पीने से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कल शाम अस्पतालों का दौरा किया और प्रभावित मरीजों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
इंदौर जिले के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पेयजल से लोगों के बीमार पड़ने की घटना पर कल देर शाम मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि अब तक 40,000 से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें 2,456 लोगों में संदिग्ध लक्षण पाए गए। इनमें से 212 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें 50 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि 162 मरीजों का इलाज अभी जारी है। श्री यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी प्रभावितों को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराया जाए, साथ ही नगर निगम को पर्याप्त अमला और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा पेयजल आपूर्ति के लिए अतिरिक्त टैंकरों की व्यवस्था की जा रही है और जहां जहां लीकेज की समस्या पाई गई है उन्हें तत्काल दुरुस्त किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व किया और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के नेता तारिक रहमान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शोक संदेश दिया। रहमान से मुलाकात के दौरान डॉ. जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि खालिदा जिया की दूरदर्शिता और मूल्य दोनों देशों के बीच साझेदारी के विकास का मार्गदर्शन करेंगे। खालिदा जिया का मंगलवार को ढाका में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। श्री मोदी ने पत्र में जून 2015 में ढाका यात्रा के दौरान खालिदा जिया के साथ हुई मुलाकात और चर्चाओं को याद किया और कहा कि वे असाधारण दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चय वाली नेता थीं। वर्ष 2025 भारत की विकास यात्रा में एक निर्णायक काल रहा। वर्ष 2025 में कई नीतियों का देश की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान रहा और मजबूत इरादों ने सार्थक परिणाम भी दिए। हमारी विशेष श्रृंखला सुधारों का वर्ष में आज हम चर्चा कर रहे हैं वर्ष 2025 में देश में आंतरिक और बाहरी सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के महत्वपूर्ण कार्यों की।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए के लिए वर्ष 2025 कई उपलब्धियों से भरा रहा और उसने 92% से अधिक दोष सिद्धि दर का प्रभावशाली रिकॉर्ड बरकरार रखा। वर्ष के दौरान एनआईए ने कई बड़ी सफलताएं हासिल की, जिनमें 26/11 हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा का अमेरिका से प्रत्यर्पण और पहलगाम तथा दिल्ली आतंकी हमलों में शामिल कई आतंकवादियों और उनके साथियों की गिरफ्तारी शामिल है। अभिकरण ने दिल्ली के लाल किला क्षेत्र में हुए कार विस्फोट मामले की चल रही जाँच में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसमें आतंकी हमले के 2 महीने से भी कम समय में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एनआईए ने वामपंथी उग्रवाद से जुड़े सदस्यों और शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ कुल 9 मामलों की जांच शुरू की और 34 आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किए। वर्ष 2025 के दौरान एनआईए ने आईएसआईएस, अलकायदा और अन्य जिहादी संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई करना जारी रखा है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
वर्ष 2025 भारत की विकास यात्रा में एक निर्णायक साल रहा। इस साल कई नीतियों का देश की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान रहा और मजबूत इरादों ने सार्थक परिणाम दिए। हमारी विशेष श्रृंखला सुधारों का वर्ष में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि वर्ष 2025 भारतीय खेलों के लिए कैसे एक महत्वपूर्ण वर्ष साबित हुआ। एक रिपोर्ट।
वर्ष 2025 भारतीय खेलों के लिए बेहद शानदार और ऐतिहासिक रहा। यह वर्ष सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीते गए रिकॉर्ड पदक के लिए नहीं बल्कि देश में खेलों की पूरी प्रणाली में आए बड़े बदलावों की सफलता के लिए भी याद किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में सरकार ने युवा मामले और खेल मंत्रालय के लिए 3,700 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिकॉर्ड बजट दिया, जो यह दर्शाता है कि सरकार खेलों को युवाओं के सशक्तिकरण और देश के सपनों से जोड़कर देखती है। इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 को लागू करना है। इस अधिनियम के तहत खेल संगठनों के लिए सुरक्षित खेल नीति अपनाना जरूरी किया गया है, ताकि महिलाओं, नाबालिग खिलाड़ियों और कमजोर वर्गों की सुरक्षा हो सके। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार आचार संहिता भी लागू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज खेलों में अवसर असीमित हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसा माहौल बनाया है जिसमें गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी अपनी प्रतिभा के दम पर कम उम्र में खेलों की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है।
आज खेलों में अवसर सीमित नहीं, असीमित अवसर है। आज देश में एक ऐसा इकोसिस्टम बना है जहां खिलाड़ियों का सिलेक्शन पहुंच के आधार पर नहीं, परिचय के आधार पर नहीं, पहचान के आधार पर नहीं, आज खेल को मैदान से लेकर के बाहर देखना हो का प्रतिभा के आधार पर होता है।
वर्ष 2025 में विभिन्न खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने पहला स्क्वाश वर्ल्ड कप खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं क्रिकेट में भारतीय महिला टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप जीता, पुरुष टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की और भारतीय महिला नेत्रहीन क्रिकेट टीम ने पहली बार टी20 विश्व कप जीता। नवम्बर 2025 में भारत ने विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल्स में पहली बार हिस्सा लिया और 9 स्वर्ण पदकों के साथ शानदार प्रदर्शन किया। एशियाई युवा खेल में भारत ने अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 48 पदक जीते और 45 देशों में छठा स्थान हासिल किया। वहीं जनवरी में भारतीय महिला खो खो टीम ने पहला खो खो विश्व कप जीता और पूरा टूर्नामेंट में अजय रही। भारत की बेहतरीन खेल व्यवस्था और ढांचे का प्रमाण ये भी है कि देश को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिली है, जिसका आयोजन अहमदाबाद में होगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
44वीं राष्ट्रीय जूनियर खो खो चैंपियनशिप कल बेंगलुरु के गंजूर में अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में शुरू हुई। प्रतियोगिता में देश भर से लगभग 1000 युवा लड़के और लड़कियों की श्रेणियों में विभिन्न स्पर्धाओं में चुनौती पेश करेंगे। दुनिया भर में नववर्ष 2026 धूमधाम से मनाया जा रहा है। नववर्ष 2026 सबसे पहले प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश किरीबाती में मनाया गया। इस अवसर पर न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी की गई। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, जापान, हांगकांग, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, अन्य मध्य पूर्वी और अफ्रीकी देशों, रूस और तुर्की समेत कई देशों में लोगों ने पारंपरिक उत्सवों और हर्षोल्लास के साथ नव वर्ष का स्वागत किया। देश भर में भी लोगों ने उत्साह प्रार्थनाओं और सार्वजनिक समारोह के साथ नव वर्ष का स्वागत किया। वहीं पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए सतर्क बनी रहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नव वर्ष के अवसर पर देश और विदेश के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं हमारे सहयोगी देवेंद्र त्रिपाठी।
धन्यवाद मुनीष। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ नववर्ष के रंग में रंगे हैं और ये बहुरंगी छटा देखते ही बनती है। अखबारों ने दुनिया भर में हुए नववर्ष का स्वागत समारोहों के समाचार तस्वीरों सहित प्रमुखता से प्रकाशित किए हैं। राजस्थान पत्रिका ने प्रतिष्ठा द्वादशी पर हुए रामलला के अभिषेक का समाचार सबसे ऊपर सचित्र प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दुर्गम क्षेत्रों से मेट्रो शहरों तक विकास का साक्षी बनेगा ये वर्ष। अखबार ने नए साल से जगी नई उम्मीदों को विस्तार से प्रकाशित करते हुए बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में सरकार के लक्ष्यों का उल्लेख किया है। नवभारत टाइम्स ने ओडिशा में हुए प्रलय प्रक्षेपास्त्र के सफल परीक्षण का समाचार अपने पहले पृष्ठ पर चित्र सहित प्रकाशित किया है।
और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रगति से पिछले 10 वर्षों में 85 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को रफ्तार देने में मदद मिली। सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर 1 फरवरी से अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाए जाने की तिथि अधिसूचित की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की दूरदर्शिता भारत और बांग्लादेश के बीच साझेदारी के विकास का मार्गदर्शन करेगी। दुनिया भर में लोगों ने आतिशबाजी और जश्न के साथ नए साल का स्वागत किया और बेंगलुरु के गुंजूर में राष्ट्रीय जूनियर खो खो प्रतियोगिता शुरू। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।